नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर क्वैक वेरेली साइमंड्स क्यूएस की विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहवर्धक बताया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा घर बैठे मतदान केंद्रों पर भीड़ की जानकारी लेने के लिए वोटर इन क्यू ऐप जारी की गई। करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय में बीज वाले मसालों, गेंदे के फूल, प्याज और लहसुन पर शोध कार्य शुरू किया जाएगा। हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में डिजिटल लैब स्थापित की जाएगी और हरियाणा में हनुमान जयंती पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। विभिन्न मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ के बाद भंडारे लगाए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर क्वैक वेरेली साइमंड्स क्यूएस की विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहवर्धक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिए जाने से भारत की युवा शक्ति को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर अनुसंधान, अध्ययन और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री मोदी ने क्यूएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुनजियो क्वैक वेरेली से मुलाकात की। श्री क्वैक वेरेली ने घोषणा की कि आगामी कुछ सप्ताह में क्यूएस भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के साथ विषयवार क्यूएस की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नवीनतम रैंकिंग के कुछ परिणाम साझा करेगा। उन्होंने बताया कि सभी G20 देशों में इस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपने प्रदर्शन में श्रेष्ठ सुधार का परिचय दिया है। भारत के विश्वविद्यालय विश्व में तेजी से अपनी साख बनाते अनुसंधान केंद्रों में शामिल हो चुके हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने हवाई सेवा देने वाली कंपनियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 वर्ष तक के उन बच्चों को उनके अभिभावकों या माता पिता के साथ ही सीट दी जाए जो एक ही PNR पर यात्रा कर रहे हैं। महानिदेशालय द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार उसके संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों के साथ सीट नहीं दी गई। महानिदेशालय ने इसके लिए हवाई परिवहन परिपत्र में उपयुक्त बदलाव करने को कहा है। केंद्र सरकार ने आधार बैंकिंग में महीने में कम से कम एक बार पैसे का जरूरी लेन देन करने संबंधी दावों को खारिज कर दिया है। इन दावों को फर्जी करार देते हुए पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक प्रभाग ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है। PIB ने कहा है कि महीने में एक बार लेन देन न होने की स्थिति में उपभोक्ता की आधार लेन देन सुविधा बंद नहीं की जाएगी। PIB ने स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली से होने वाले लेन देन के लिए बैंक खातों के साथ मोबाइल नंबर जोड़ना अनिवार्य नहीं किया है जैसा कि दावा किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने वोटर इन क्यू नामक ऐप जारी की है जिसके माध्यम से मतदाता घर बैठे ही मतदान केंद्रों पर लगने वाली भीड़ की जानकारी ले सकेंगे और भीड़ कम होते ही मतदान के लिए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस मोबाइल ऐप को प्रायोगिक आधार पर अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि ऐप जारी करने का उद्देश्य इस बार मतदान प्रतिशत को गत लोकसभा चुनाव में 70% के मुकाबले कम से कम 75% तक ले जाना है। श्री अग्रवाल ने बताया कि मोबाइल ऐप पर मतदाता को अपने क्षेत्र, पोलिंग बूथ और अपना नाम फीड करना होगा। OTP मिलने पर वो सीधे BLO से जुड़ जाएगा और BLO ऐप में हर एक घंटे या आधे घंटे बाद बताएगा कि इस समय कितने लोग मतदान के लिए कतार में हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 30 शहरी विधानसभा क्षेत्रों में इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा जिससे भीड़ के कारण मतदान न करने वाले लोग भी इस बार मतदान कर सकेंगे। चरखी दादरी की जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी बिना किसी तथ्यों के आधार पर मीडिया को चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देगा ताकि जनता में चुनाव से संबंधित कोई भ्रम न फैले। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी चुनाव संबंधी जानकारी के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि जिला निर्वाचन कार्यालय ने किसी भी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को इसके लिए अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपने स्तर पर चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी साझा न करे, ये सरकारी कर्मचारी सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध है और भविष्य में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। करनाल के महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय में बीज वाले मसालों गेंदे के फूल प्याज और लहसुन पर शोध कार्य शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुरेश कुमार मल्होत्रा ने बताया कि आगामी खरीफ के मौसम में 10 एकड़ में सौंफ धनिया अजवाइन मेथी प्याज और लहसुन की बुआई कर इन पर शोध किया जाएगा और बीज उत्पादन कर किसानों को उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। कुलपति ने बताया कि शोध कार्य करने के लिए वृक्षारोपण मसाला औषधि एवं सुगंधित पादप शोध विभाग बनाया गया है जिसके लिए वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि शोध कार्य पर तेजी से कार्य हो और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए इसके लिए लगातार निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जमीन चिन्हित कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन न हो अर्थात किसान इकोसिस्टम से जुड़कर खेती करें। इसके लिए महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर किसानों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक होगा। बदलाव से न केवल किसान पहले की अपेक्षा आर्थिक तौर पर ज्यादा खुशहाल होंगे साथ ही पारंपरिक खेती की तरफ उनका रुझान भी कम होगा। हरियाणा में अनुसूचित जाति के किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा उनकी क्षमता निर्माण को मजबूती प्रदान करने के लिए हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक डिजिटल लैब की स्थापना की जाएगी। कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि हरियाणा सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इसके लिए 60 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस लैब में किसानों को कृषि क्षेत्र से संबंधित नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिजिटल लैब में मौसम अनुदान संबंधी और फसलों में होने वाले नुकसान के साथ साथ फसलों में कीट आदि की जानकारी किसानों को दी जाएगी। डिजिटल लैब परियोजना की प्रमुख अन्वेषक डॉ. रश्मि त्यागी ने बताया कि अनुसूचित जाति के किसानों को कृषि पोर्टल से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत किया जा सके। डिजिटल लैब के माध्यम से किसानों के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निवारण करने में भी मदद मिलेगी। आज हरियाणा में हनुमान जयंती पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। कुरुक्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित श्री दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर में प्रातःकाल ध्वजारोहण किया गया और विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना कर उन्हें नया गणवेश धारण करवाकर उनका श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर श्री सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। भिवानी, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, अम्बाला और पानीपत से भी हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ करवाए जाने, शोभा यात्राएं निकालने और भंडारों के आयोजन के समाचार मिले हैं। कैथल की ट्रैफिक पुलिस ने आज गुल्ला के तहसीलदार मनोज मलिक की गाड़ी का लाल बत्ती लगने पर चालान किया। गाड़ी उनके पिताजी के नाम पर पंजीकृत थी। ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें बिना आज्ञा दोबारा गाड़ी पर लाल बत्ती न लगाने के निर्देश भी दिए। चालान लोगों की शिकायत पर किया गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कल रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करेगा। बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए सुनवाई रोहतक के मुख्य अभियंता के कार्यालय में सुबह 11 बजे की जाएगी। इस दौरान जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 1 लाख रूपये से अधिक और 3 लाख रूपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतें सुनी जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर क्वार्क, वेरेली, साइमंड्स, क्यूएस की विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहवर्धक बताया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा घर बैठे मतदान केंद्रों पर भीड़ की जानकारी लेने के लिए वोटर इन क्यू ऐप जारी की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।